All glory to the Samudra. All glory to the Samudra. All glory to the Samudra. All glory to Sri
यह लेक्चर परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज द्वारा दिया गया श्री श्री राधा पार्श्वस्थी मंदिर नई दिल्ली में चंदन यात्रा के उत्सव के ऊपर हरे कृष्ण दिनांक 4/5/2014
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद हरे हरे कृष्ण। अब सबको सुनाई दे रहा है तो मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है, ऊपर से माइक कमजोर है। आप लोगों को सुनाई दे रहा है तो आप में से कितने भक्त हो इस सभा में जो हर रविवार को आते हो मंदिर? तो जैसे आपने सुना था आज 4:15 आप भगवान का खास दर्शन प्राप्त करोगे। भगवान सजे होंगे चंदन के साथ और आप में से कई भक्त पिछले कई दिनों से चंदन घसीट रहे हो, है कि नहीं? मैं देखता हूँ सारा दिन कोई ना कोई जरूर सेवा कर रहा है। तो हम सोच रहे थे कि आपको ये चंदन यात्रा की जो कथा है उस विषय पर चर्चा की जाए, इसका गहराई के साथ। दो माइक। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। मुझे तो लगता है ये ज्यादा अच्छा है। हरे कृष्णा। भगवान के चंदन यात्रा की लीला का वर्णन चेतन क्षेत्र गीता में प्राप्त होता है, मध्य लीला। आप ऐसे कितने भक्त हो जिनके पास चैतन्य चरितमृता है घर में? बस सबके पास होनी चाहिए। तो चैतन्य चरितमृता में चैतन्य महाप्रभु जी के गुरु का नाम क्या था? लगभग 700 साल हुए और धर्म कोई बहुत ही ऊंची थोड़ी है भगवान के पास 24 घंटे भगवान के और भगवान के नाम उनके मन में सदा ही समाप्त की थी और गोवर्धन कुंड में स्नान करके विश्राम कर रहे थे जबकि एक बहुत ही खूबसूरत ग्वाला उधर आया। मटके में दूध था और उस ग्वाले ने माधवेंद्रपुरी से कहा कि मुझे लगता है तुम भूखे हो प्यासे हो, ये दूध पी लो और मैं लौटता हूँ, लौट कर ये मटका ले लूँगा। माधवेंद्रपुरी ने जब इस बालक को देखा वो बड़े प्रभावित हुए थे। कभी इतिहास में इतना खूबसूरत बालक उन्होंने नहीं देखा था और बड़ी मधुर आवाज। माधवेंद्रपुरी ने उनसे पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मैं भूखा था प्यासा था? उस बालक ने कहा, ग्वाले ने कहा, मेरे गांव की औरतें दूध लेने गई थी और जब उन्होंने देखा आपको, उन्हें कुएं में जानी थी पानी लेने, और जब आपको देखा तो उन्हें ये अंदाजा हुआ कि आप सर भूखे हो और प्यासे हो, और मेरे गांव में कोई भूखा नहीं जाता, कोई प्यासा नहीं जाता, तो आप ये दूध पीजिए और मैं लौटता हूँ ये मटका लेने के लिए। माधवेंद्रपुरी ने दूध पी लिया और राह देखी ये ग्वाला कब आएगा मटका लेने के लिए। ग्वाला लौटा नहीं और माधवेंद्रपुरी को हल्की सी नींद आ गई। नींद में वही बालक वाला सपने में आया। नींद में उस बालक ने माधवेंद्रपुरी के हाथ को पकड़ा, हाथ को पकड़कर ले गए झाड़ियों में और माधवेंद्रपुरी से कहने लगे, मैं तुम्हारी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ और मुझे मुसलमानों के अत्याचार से बचाने के लिए यहाँ झाड़ियों में पुजारी ने छुपा दिया था, पर मुझे बहुत गर्मी लग रही है तो मुझे यहाँ से ले जाओ। तो माधवेंद्रपुरी ने जब उसी ग्वाले को देखा और ये देखा कि ये स्वयं भगवान है, वो बड़े प्रभावित हुए और एक रूप से शर्मिंदा भी हुए। शर्मिंदा इस रूप से हुए कि मैंने भगवान से सेवा ले ली थी, भगवान ने उनको दूध दिया और उन्होंने दूध पी लिया। जो उच्च कोटि का भक्त होता है वो केवल भगवान की सेवा करना चाहता है, भगवान से कुछ लेना नहीं चाहता। वैसे तो भगवान भगवद्गीता के 7वें अध्याय में कहते हैं चार परिस्थितियों में लोग मेरी शरण में आते हैं। एक है जो चतुर्विधा भजन्ते माम, एक है इनके पास ज्ञान है, ज्ञान के आधार पर मेरी शरण में आता है। दूसरे श्रेणी का व्यक्ति है जो जिज्ञासु है, फिर जैसे धन चाहिए, और चौथा जो दुखी रोगी पीड़ित है। भगवान कहते हैं ये चार के चार श्रेणी के व्यक्ति पूरी आत्मा हैं, पर मैं सर्वश्रेष्ठ वो है क्योंकि ज्ञान के आधार पर मेरी शरण में आता है। तो माधव पूरी जब भगवान से सेवा ले ली थी, भगवान आए ग्वाले के रूप में उन्हें दूध देने के लिए, और माधवेंद्रपुरी को बुरा लगा कि भगवान को मिले और पहचान नहीं पाए कि वो भगवान थे, तो उनके हृदय में बड़ा दुख था। अगले दिन सुबह गोवर्धन के ब्रजवासियों को बुलाया और सपने की चर्चा की। सबने निर्णय किया चलो चलते हैं देखने के लिए कि ये सपना सच था या झूठ। और जब गए कैंची वगैरह लेकर झाड़ियों को काटा, खोदा, और उसी स्थान पर जिसका वर्णन हुआ था सपने में, भगवान के आर्च विग्रह की प्राप्ति हुई। भगवान आर्च विग्रह के रूप में प्रकट करते हैं, और इस आर्च विग्रह भगवान में कोई अंतर नहीं। कम बुद्धि के लोग सोचते हैं ये तो पत्थर की मूर्ति है, और ये वैष्णव लोग मूर्ख लोग उसे भगवान मान रहे हैं। तो भगवान के आर्च विग्रह भगवान में कोई अंतर नहीं। उस समय मुसलमानों का शासन था, खास करके उत्तर भारत में, और मुसलमानों ने अनेक मंदिरों को नष्ट कर दिया था। उनके सिपाहियों ने जाकर कई मंदिरों की मूर्तियों को तोड़ दी, और इस कारण कई पुजारी मूर्तियों को उठाकर जयपुर चले गए, क्योंकि जयपुर में उस समय हिंदू राजा था, और इसलिए जयपुर को गुप्त वृंदावन भी कहा जाता है। और कई पुजारियों ने मूर्तियों को छुपा दिया खोद कर कि ये मुसलमान सिपाही ढूंढ नहीं पाए। तो ये था ये जो गोपाल का विग्रह है, जिसकी स्थापना हुई थी लगभग 5000 साल पूर्व ब्रज के द्वारा। और जब उन्होंने खोदा और देखा, उन्होंने देखा कि सचमुच गोपाल का विग्रह इधर है। माधवेंद्रपुरी को भगवान ने आदेश दिया था क्या कि मुझे वहाँ से उतार कर, मुझे वहाँ बहुत गर्मी लग रही है, मेरा स्नान करवाना और मेरी स्थापना करना इस पर्वत के ऊपर। तो माधवेंद्रपुरी और उनके साथियों ने भगवान को खोज को भगवान को प्राप्त किया, भगवान को निकाल मूर्ति को निकाला वहाँ से। मूर्ति इतनी भारी थी कि कोई एक व्यक्ति उसे उठा नहीं सका, कई भक्तों को मिलकर उठाना पड़ा। और माधवेंद्रपुरी ने एक दिन में पूरा प्रबंध कर दिया मूर्ति स्थापना के लिए। हम लोग जब इस्कॉन में मंदिर खोलते हैं, हमें कई हफ्ते लग जाते हैं तैयारी करने में, पर माधवेंद्रपुरी ने एक दिन में तैयारी कर दी, और एक बड़े पत्थर पर ऑल्टर को ऑल्टर बनाया, वहाँ भगवान के विग्रह की स्थापना की, और इस प्रकार वहाँ के ब्रज के सब लोगों को जोड़ा किस में, भगवान की सेवा में। बड़ा सुंदर उत्सव की तैयारी की, सारे ब्रजवासी इसमें जुड़े थे, सब ने साथ दिया, किसी ने गाय दी, खेती दी। वो थोड़े समय में ही गोपाल विग्रह बड़े मालिक बन गए, और उनके पास इतनी जमीन, गायें। प्राचीन समय में व्यक्ति की संपत्ति मापी जाती थी देखकर कितनी गायें हैं कितनी जमीन है। तो थोड़े समय में ही माधवेन्द्रपुरी ने भगवान की स्थापना के का सारा प्रबंध किया। 900 मटकों में पानी लाए गोविंद कुंड से, पंचगव्य के द्वारा भगवान का अभिषेक हुआ और बहुत सुंदर रूप से भगवान की स्थापना हो गई। इस प्रकार 2 सालों के लिए भगवान की पूजा चली और 2 बंगाली ब्राह्मण आए थे बंगाल से, तो माधवेन्द्रपुरी ने उन्हें दीक्षा दी और उन्हें शिक्षा दी, दीक्षा देकर कि भगवान के विग्रह की देखभाल कैसे करनी चाहिए। तो दो साल बाद माधवेन्द्रपुरी को भगवान ने फिर से एक आदेश दिया। भगवान ने कहा, माधवेन्द्रपुरी मैं तुम्हारा आभारी हूँ कि तुमने बड़े सुंदर तरीके से मेरी स्थापना की, पर मुझे अभी भी थोड़ी गर्मी लग रही है। भगवान ने पहले सपने में क्या कहा था, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे वहाँ से निकालो, क्योंकि भगवान के आर्च विग्रह को खोद कर छुपा दिया था पृथ्वी के नीचे कि कोई पहचान नहीं पाए कि मूर्तियाँ हैं। तो भगवान खुश थे कि माधवेन्द्रपुरी ने उनकी स्थापना की और 900 लोटों के साथ, 900 लोटे आए थे कैलाश आए थे गोविंद कुंड के जल के साथ, भगवान का उससे स्नान करवाया। पर भगवान ने सपने में कहा, मुझे अभी भी गर्मी लग रही है, मेरे लिए चंदन लेकर आओ। और भगवान ने उन्हें आदेश दिया, चंदन लेकर आओ। और चंदन लाने के लिए कहाँ जाना था, जगन्नाथपुरी, अंदाजा लगाओ। भगवान अपने भक्त की परीक्षा ले रहे थे और भगवान ने कहा, चंदन लेकर आओ, मुझे अभी भी गर्मी लग रही है। चंदन भगवान पर लगाया जाता है गर्मी के मौसम में। और माधवेन्द्रपुरी की इस लीला से पहले हम पढ़ते हैं कि भगवान जगन्नाथ जी को भी चंदन से सजाया जाता था। भगवान महाराज इंद्रदम्न को आदेश दिया था भगवान ने कि मुझे चंदन से, चंदन लगाकर मेरे शरीर को ठंडा करो। तो जगन्नाथपुरी में प्राचीन रिवाज है कि आँखों को छोड़कर भगवान के शरीर को चंदन, भगवान के शरीर में चंदन लगाया जाता है। तो माधवेन्द्रपुरी को भगवान ने क्या कहा, चंदन लेकर आओ मेरे लिए। तो माधवेन्द्रपुरी ने पुजारियों के हाथ भगवान के विग्रह की देख सेवा छोड़ी और माधवेन्द्रपुरी चले पैदल कहाँ, उड़ीसा तक, उड़ीसा पहुँचने के लिए। देखिए उनका भाव, अगर आपको कहा जाए आप कितने 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 मील होंगे गोवर्धन से जगन्नाथपुरी, 1500 किलोमीटर शायद जाना, तो कम से कम 1500 किलोमीटर गोवर्धन से जगन्नाथपुरी, मेरे ख्याल से थोड़ा ज़्यादा ही होगा, अच्छा 1800 पर कुछ। तो भगवान ने आदेश दिया माधवेन्द्रपुरी को, मेरे चंदन लेकर आओ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। माधवेन्द्रपुरी ने एकदम तैयार हो गए भगवान के इस आदेश का पालन करने के लिए। तो माधवेन्द्रपुरी पैदल चले, आजकल अगर आपने मथुरा या गोवर्धन से जगन्नाथपुरी पहुंचना है तो आप हवाई जहाज से जा सकते हो, हाँ दिल्ली से, या ट्रेन से जा सकते हो, या मोटर से जा सकते हो, स्कूटर से जा सकते हो, तो माधवपुरी 1800 किलोमीटर की यात्रा बिल्कुल पैदल की। उन्होंने ये नहीं कहा भगवान ये तो बड़ा कठिन आदेश है इतनी दूर जाकर चंदन लाना। तो माधवपुरी निकले जगन्नाथपुरी के लिए और रास्ते में रेमुना में रुके। चैतन्य महाप्रभु जी आए थे रेमुना में यात्रा करते करते और कीर्तन कर रहे थे राधा गोपीनाथ के समक्ष। और जब कीर्तन कर रहे थे भगवान का एक विग्रह हार उनके सिर पर गिरा। महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए और फिर महाप्रभु को वहाँ याद आई ये कथा जो उन्होंने ईश्वरपुरी उनके गुरु द्वारा सुनी थी जिसमें माधवेंद्रपुरी की लीला का वर्णन है। तो माधवेंद्रपुरी जब पहुंचे रेमुना में तो वहाँ था राधा गोपीनाथ का मंदिर। एक बहुत प्राचीन मंदिर है और कहा जाता है कि जो राधा गोपीनाथ का विग्रह है ये त्रेता युग से है। भगवान राम समझा रहे थे कि द्वापर युग में मैं प्रकट होऊंगा इस रूप में। और कहा जाता है कि मूर्ति बनाई थी भगवान राम ने खुद। तो बड़ा प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर है हजारों यात्री रोज जाते हैं। तो जब माधवेंद्रपुरी रेमुना में पहुंचे राधा गोपीनाथ का दर्शन लिया उनके मन में यह जिज्ञासा थी कि अगर मुझे पता लग जाए यहाँ क्या क्या भोजन भगवान को दिया जाता है तो मैं लौटकर अपने भगवान के लिए भी ऐसी योजना कर सकूं। प्राचीन समय से ये जो रेमुना राधा गोपीनाथ का मंदिर है बड़ा प्रसिद्ध था। दूर दूर से यात्री आते थे राधा गोपीनाथ का मंदिर दर्शन लेने के लिए। तो माधवेंद्रपुरी ने वहाँ के पुजारियों से पूछा अब भगवान को क्या भोग लगाते हो। जैसे भौतिक क्षेत्र में आप एक दूसरे से सीखते हो, आपको अगर कुछ टेक्नोलॉजी लानी है तो विदेश जाते हो सीख कर आते हो, विदेश जाते हो पढ़ाई करने के लिए। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में भी हम एक दूसरे से सीखते हैं। हमारे इस्कॉन संस्था में भी हम देखते हैं अगर किसी भक्त के पास कोई कला हो तो वो ये कला दूसरों को भी देने का प्रयास करता है क्योंकि वो चाहता है कि हर व्यक्ति भगवान की सेवा में जुड़े। तो माधवेंद्रपुरी पूछ रहे थे पुजारियों से हाँ क्या क्या भोग लगाते हो। और उन्हें ये पता लगा कि शाम के समय भगवान को खीर खिलाते हैं, खीर अर्पण करते हैं। और ये खीर इतनी मीठी थी कि इसको कहा जाता था अमृत अकेली। उसका टेस्ट इतना अच्छा था कि ऐसे लगता था कि ये खीर स्वर्ग में बनकर आई है, स्वर्ग से बनकर। तो ये था, ये सूचना मिली थी। तो माधवेंद्रपुरी यही सोच रहे थे कि अगर मुझे खीर चखने का मौका मिल जाए तो मैं लौटकर अपने गोपाल के लिए भी ऐसी खीर बना सकूं। पर माधवेंद्रपुरी ने जब ये विचार ये भाव प्रकट किया उस समय भगवान को भोग लग रहा था। तो एक तरफ से माधवेंद्रपुरी शर्मिंदा हुए कि उनके मन में इच्छा थी कुछ खीर चखने का मौका मिले और जब भोग लग रहा है तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें भोग चखेंगे खाएंगे। जब आप भगवान के लिए भोग तैयार कर रहे हो आपके मन में ये भाव होना चाहिए कि ये भोग बन रहा है किसके लिए, भगवान के लिए। और जब भोग हम रसोई से भगवान के मंदिर में ले जाते हैं तो उसको ढक कर ले जाते हैं, क्यों कि कोई देख नहीं पाए, सबसे पहले भगवान देखें और ये है भगवान की खुशी के लिए। तो माधवेंद्रपुरी को दुख हुआ तो इन्होंने ये इच्छा प्रकट की थी कि मुझे अब ये चखने को मिले, और भगवान को भोग लग रहा था। तो माधवेंद्र पुरी चखे बिना वहाँ मंदिर छोड़कर बाजार में चले गए भगवान का जाप करने के जाप कर रहे थे। भगवान को पता था उनकी शुद्ध भक्त की इच्छा। उनकी क्या इच्छा थी कि उन्हें ये खीर चखने के लिए मिले। भगवान के लिए कोई कार्य असंभव है? भगवान हाथी को भी सुई के छेक से निकाल सकते हैं। भगवान के लिए कोई कार्य असंभव नहीं। जो भौतिकवादी व्यक्ति हैं, खास करके जो मायावादी भाव के, वो ये नहीं समझ पाते कि भगवान किसी अंग से किसी अंग और दूसरे अंग का कार्य कर सकते हैं। उनके लिए कोई कार्य असंभव नहीं। तो भगवान ने क्या किया? एक खीर के प्याले को चुरा कर पर्दे के पीछे छुपा दिया, और जो पुजारी था उसे सपने में आदेश दिया, क्या मैंने मेरे प्रिय भक्त माधवेंद्र पुरी की खुशी के लिए एक खीर का प्याला चुरा कर पर्दे के पीछे रखा है, तो मैं इस खीर के प्याले को लेकर माधवेंद्र पुरी को पहुंचा दो। पुजारी आश्चर्यचकित हो गया। पुजारी ने कहा, भगवान ने खीर के प्याले को चुरा कर छुपा दिया है, ये कैसे संभव हो सकता है? खैर, सपने के आदेश के अनुसार पुजारी जी जागे। जैसे 4:30 बजे आपके मंदिर में आरती होती है, वो जो पुजारी है वो भगवान को जगाने के लिए 3:30 बजे आते हैं। भगवान को जगाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, और फिर उसके पश्चात फिर आप दर्शन प्राप्त करते हो। तो पुजारी जी सुबह जागे, स्नान किया, गए भगवान को जगाया, और क्या देखा? सचमुच खीर का प्याला भगवान ने पर्दे के पीछे छुपा कर रखा था। तो भगवान के लिए कोई कार्य असंभव नहीं। आप साक्षी गोपाल की कथा जानते हो। एक ब्राह्मण था जिसकी समाज में बेइज्जती हो रही थी, क्योंकि किसी ने आरोप लगाया था कि इस ब्राह्मण ने भंग पिला दी थी, खिला दिया था एक धनी व्यक्ति को, और धनी व्यक्ति ने वचन दिया था कि मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे से कराऊंगा। और जब लौट कर उसने अपने घर वालों से कहा, सब ने इस रिश्ते के प्रति इनकार कर दिया। पत्नी ने कहा, अगर तुम ये शादी करवाओगे तो मैं तो आत्महत्या कर लूँगी। तो बूढ़े धनी व्यक्ति के सामने ये बड़ी समस्या थी। और उनके बेटे ने कहा, तुम बार बार कह रहे हो कि मेरे पिता ने ये कहा था कि मेरी बहन की शादी तुम्हारे साथ होगी, कोई प्रमाण है तुम्हारे पास? तो ब्राह्मण ने कहा, है प्रमाण। कौन? गोपाल विग्रह उस वक्त थे काम वृंदावन में। तो इस ब्राह्मण को पूरा विश्वास था भगवान की असीम शक्ति में। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, गोपाल विग्रह प्रमाण है, साक्षी हैं। तो इस धनी व्यक्ति के बेटे ने कहा, ठीक है, अगर गोपाल विग्रह साक्षी बनते हैं कि मेरे पिता ने यह वचन दिया था कि उनकी बेटी की शादी तुम्हारे से होगी, तो मुझे कोई इतराज नहीं होगा। वो सोच रहा था मन में, वो पत्थर की मूर्ति कहाँ साक्षी बन पाएगी? तो भक्त गया तेजी के साथ वृंदावन। भक्त ने अपने गोपाल विग्रह से कहा कि मेरी बेइज्जती हो रही है, लोग मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आप साक्षी थे जब उस धनी व्यक्ति ने वचन दिया था क्योंकि बेटी की शादी होगी मेरे साथ। गोपाल भिगड़ा ने कहा पर मैं तो चल नहीं सकता, मैं नहीं दूर चलकर कैसे आऊंगा। तो भक्त ने कहा अगर आप भूल सकते हो तो चल भी सकते हो। भगवान साक्षी बने और इस ब्राह्मण की इज्जत बची। तो इस प्रकार हमारे शास्त्र में अनेक प्रमाण हैं। तो हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए ये तो पत्थर की मूर्ति है। भगवान अपने आर्चर विग्रह के रूप में प्रकट करते हैं और हम भक्तों को उनकी सेवा में जुड़ने का मौका देते हैं। जैसे जब माधवेंद्रपुरी ने गोपाल विग्रह की स्थापना की सारे ब्रज गोवर्धन के लोग सब जुड़े सेवा में, किसी ने गाय दी, किसी ने खेती दी, किसी ने फल दिया, सब्जी दी, तो सबके सब जुड़े इस उत्सव में। तो माधवेंद्रपुरी भगवान ने खीर का प्याला चुरा कर छुपा दिया था पर्दे के पीछे। तो जब पुजारी ने देखा कि खीर का प्याला हुआ है बड़ा प्रसन्न हुआ और पुजारी कहने लगे, सोचने लगे कौन है ये भाग्यवान व्यक्ति माधवेंद्रपुरी जिसकी खुशी के लिए भगवान ने ये खीर का प्याला चुराया। उनका परिचय नहीं था माधवेंद्रपुरी के साथ। तो जैसे भगवान ने कहा था बाजार में जाओ वहाँ ये महान संत बैठा होगा जप करते हुए। तो पुजारी जी गए बाजार में, पुकारा यहाँ कोई माधवेंद्रपुरी नाम का व्यक्ति है। जब माधवेंद्रपुरी ने अपना नाम सुना तो कहा हाँ मैं हूँ। तो पुजारी ने कहा तुम अत्यंत भाग्यशाली हो, तुम्हारी खुशी के लिए भगवान ने खीर का प्याला चुरा कर छुपा दिया था पर्दे के पीछे और मुझे आदेश दिया है कि खीर का प्याला तुम्हें पहुंचाया जाए। ये थी माधवेंद्रपुरी की इच्छा है ना कि मुझे अगर ये खीर चखने को मिल जाए तो मैं अपने गोपाल विग्रह के लिए भी बनाऊंगा। माधवेंद्रपुरी इतने खुश हुए कि पुजारी जी समझ पाए कि हाँ अब मैं समझा भगवान ने क्यों इस महान संत की खुशी के लिए खीर का प्याला चुराया। तो माधवेंद्रपुरी ने डोना में मट्टी का मटका था उसके छोटे छोटे टुकड़े किए, रोज एक को चखते थे। पर और आगे माधवेंद्रपुरी फिर चले जगन्नाथपुरी की ओर क्योंकि यमुना में सबको पता लग गया कि ये वो महान संत है जिसकी खुशी के लिए भगवान ने खीर का प्याला चुराया था। और यहाँ भी माधवेंद्रपुरी जाते थे बड़ी भीड़ हो जाती थी। ऐसे भौतिक क्षेत्र आज के वातावरण में अगर कोई प्रसिद्ध व्यक्ति या फिल्मी कलाकार या तीर्थ जाता है तो सब काफ़ी भीड़ हो जाती है। तो उस समय समाज में संतों का आदर था तो जहाँ भी माधवेंद्रपुरी जाते थे भीड़ हो जाती थी जो उन्हें अच्छा नहीं लगा। तो माधवेंद्रपुरी गए जगन्नाथपुरी, वहाँ उन्होंने अपने गोपाल की कथा सुनाई लोगों को और जगन्नाथपुरी मंदिर के जो अधिकारी थे उन्हें भी कथा सुनाई गोपाल विग्रह कैसे प्रकट हुए। माधवेंद्रपुरी का ऐसा सेवा भाव था कि सारा दिन गोपाल विग्रह की पूजा करते थे और रात को उन्हें सुलाने के बाद विश्राम करने के बाद खुद थोड़ा सा दूध पीते थे बस ये थी उनकी खुराक। सारा दिन कुछ नहीं खाना, जब गोपाल वगैरह को सुलाते थे तो उसके पश्चात थोड़े से थोड़ा सा दूध पीते थे, बस उनकी तपस्या की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो माधव ने पूरी के लिए गोपाल वगैरह के लिए जगन्नाथपुरी मंदिर के अधिकारियों ने लगभग 80 पाउंड चंदन और कैम्फर, कपूर कपड़ा बंद कर दिया था जगन्नाथपुरी के अधिकारियों ने। साथ में उन्होंने एक पत्र दिया कि ये कपूर और चंदन हमने दान दिया है, उन दिनों में मुसलमान अधिक चुंगी वाले थे हर जगह, जैसे आजकल भी चुंगी वाले, आजकल भी चुंगी भरनी पड़ती है लोगों को। तो लगता है कि ये रिवाज पहले भी था और जगन्नाथपुरी मंदिर के अधिकारियों ने पत्र दिया लेकर कि हमने ये चंदन दान में दिया है, तो इस प्रकार माधवपुरी को कोई तकलीफ नहीं दे। आज के वातावरण में भी ऐसे करना पड़ता है, कई बार हमारे विदेश के मंदिर आते हैं यहाँ खरीदने के लिए धोती कुर्ता, और जाने से पहले पत्र ले लेते हैं कि हमने ये दान में दिया। तो माधवपुरी और उनको सहयोग देने के लिए जगन्नाथपुरी मंदिर के अधिकारियों ने दो व्यक्तियों का सहयोग भी दिया, दो व्यक्ति दिए साथ में ये चंदन उठाने के लिए। तो माधवपुरी दो भक्तों के सहयोग से इतना चंदन कपूर उठाकर लौट रहे थे, कहाँ जाने के लिए, गोवर्धन आने के लिए। पर रास्ते में फिर से वो रुके, कहाँ, रेवनों में, वो रास्ते में आता है। तो माधवपुरी एक रात विश्राम कर रहे थे वहां, जब भगवान ने फिर से उन्हें एक आदेश दिया सपने में। भगवान ने कहा, माधवपुरी मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूं, मेरी प्रशंसा के लिए तुमने इतनी लंबी यात्रा की चंदन और कपूर लाने के लिए, पर मेरे में गोपाल विग्रह माधवपुरी को आदेश देने। तो गोपाल विग्रह ने कहा सपने में, पर मेरे में और गोपीनाथ में कोई अंतर नहीं, तुम ये चंदन गोपीनाथ को लगा दो। माधवपुरी ने जब इस सपने में ये आदेश प्राप्त हुआ तो अगले दिन सुबह माधवपुरी ने मुझे गोपीनाथ मंदिर के पुजारियों को कहा सपने के बारे में, और पुजारी तो खुश हो गए। अगर कोई आकर कहे ये लो 80 पाउंड चंदन और 20 पाउंड कपूर, सब खुश हो जाएंगे। तो माधवपुरी के निर्देशन में फिर भगवान को रोज चंदन लगाया जाता था कपूर के साथ, और इस प्रकार ये चंदन यात्रा उत्सव वैष्णव के सभा में आरंभ हुआ। जैसे मैंने कहा पहले चंदन यात्रा चंदन भगवान जगन्नाथ जी को लगाया जाता था, पर हमारे गौड़ीय वैष्णव में ये आरंभ हुआ है किसके साथ, माधवपुरी में। तो माधवपुरी खुद देखते थे कि चंदन गोपीनाथ को ठीक लगाया जा रहा है कि नहीं, और खुद ये सेवा की उन्होंने 3 हफ्ते के लिए, और उसके बाद फिर जगन्नाथपुरी गए। तो माधवपुरी की कथा में हम क्या देखते हैं, एक तो देखते हैं निष्काम भाव से वो हमेशा सेवा कर देते हैं, उनके मन में अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं चाहिए था, केवल एक ही भावना थी भगवान की सेवा। और जब वो जा रहे थे चंदन लेने के लिए तो अद्वैत आचार्य उन्हें मिले थे शांतिपुर में, उन्होंने भी मधुबनपुरी से दीक्षा ली थी। भगवान ने उनकी परीक्षा ली, कहा चंदन लाने के लिए, और मधुबनपुरी ने इस आदेश का पूरा पालन किया। तो भगवान ने देखा कि परीक्षा में तो मधुबनपुरी सफल हो गए हैं, भगवान ने उनको एक बड़ा कठिन कार्य दिया करने के लिए, जो मधुबनपुरी ने निभाया पैदल चलकर आए। पर फिर चैतन्य चतुर्विध में लिखा गया है कि भगवान को पता था कि अगर ये लौटेंगे, इतने मुसलमान चुंगी वाले भी होंगे, वो संभव है कष्ट भी दे सकते हैं मधुबनपुरी को। भगवान ने क्या कहा, इसी चंदन को लगा दो गोपीनाथ विग्रह के ऊपर, मेरे में और गोपीनाथ में कोई अंतर नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रभावित हुए थे इस कथा के साथ। चैतन्य महाप्रभु जी के गुरु का नाम था ईश्वरपुरी, उनके गुरु थे मानंदपुरी, और चैतन्य महाप्रभु जी ने बड़ी विनम्रता के साथ ईश्वरपुरी की सेवा की। मानंदपुरी के एक और शिष्य थे जिनका नाम था रामचंद्रपुरी, जो थे ईश्वरपुरी के गुरु भाई। रामचंद्रपुरी में एक कमी ये थी, हमेशा वो भक्तों की कमियों को ढूंढते थे। जैसे कि जब सन्यासी आते थे जगन्नाथपुरी, पहले तो उनके सामने पहुंच जाते थे बड़ा भंडारा लेकर, फिर जब सन्यासी कहते थे भाई हम सन्यासी हैं इतना नहीं खाना चाहिए, हम थोड़ा ही खाएंगे, फिर वो कहते थे देखो ये महाप्रसाद है, नहीं खाओगे तो अपमान है, और फिर जबरदस्ती नहीं खिलाते थे। और जब सन्यासी खा लेते थे तो कहते थे देखो सन्यास लिया है दुनिया को दिखाने के लिए, और खाते हैं क्या घी हस्ता से बेचारा, ऐसा भाव था। एक दिन रामचंद्रपुरी गए चैतन्य महाप्रभु के कमरे में, गर्मी का मौसम था, लकड़ी की फर्श थी, तो अनेक चीटियाँ चल रही थी फर्श में, गर्मियों में चीटियाँ भी उभार आ जाती हैं ऊपर आ जाती हैं। तो रामचंद्रपुरी ने कहा देखो लगता है हमारे सन्यासी ने कल बहुत मीठा खाया था। तो महाप्रभु ने इतनी गंभीरता से इसे स्वीकार किया कि उन्होंने खाना बिल्कुल बंद कर दिया। महाप्रभु ने कहा था कि एक सन्यासी के जीवन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जैसे कि एक सफ़ेद चादर में अगर काला दाग हो तो दूर से भी दिख जाएगा, तो उसी प्रकार साधु के आचरण में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार ईश्वर रामचंद्रपुरी की आदत थी घर में कमजोरियाँ आलोचना करना, और अपने अंतिम दिनों में मधुबनपुरी ये भावना प्रकट कर रहे थे कि उनका जीवन असफल हुआ। भक्त का लक्षण ये है कि वो कभी ये नहीं सोचता उसने बहुत सेवा की है, भक्त यही सोचता है कि मैंने कुछ सेवा नहीं की। जैसे कि अगर जब प्रभुपाद जी को कहा जाता था आपने इतनी सेवा की है, प्रभुपाद जी कहते थे नहीं हमने कुछ सेवा नहीं की। कृष्णदास कविराज जी जिन्होंने हमें चैतन्य चरितमृत का ग्रंथ दिया है, उन्होंने कहा कि मेरे में इतने दोष हैं कि अगर मेरा नाम भी लोगे तो तुम्हारे सारे गुण समाप्त हो जाएंगे। ये है संतों का की विनम्रता। तो मधुबनपुरी ये भाव प्रकट कर रहे थे कि उनका जीवन असफल हुआ है, भगवत प्रेम प्राप्त नहीं हुआ। तो रामचंद्रपुरी उनके शिष्य कहने लगे, उन्हें मायावादी सिद्धांत का उपदेश देने लगे। तो गुरु ने कहा चले जाओ मेरी नजरों से दूर, तुम्हें देखते हुए अगर शरीर त्यागूंगा तो जीवन असफल होगा। तो मधुबनपुरी बहुत ही ऊंची कोटि के भक्त थे, और चैतन्य महाप्रभु ने भगवान नित्यानंद से कहा, तुम अंदाजा लगा सकते हो कि माधवपुरी पर भगवान की कितनी कृपा है। भगवान ने 3 दफे उन्हें आदेश दिया सपने में क्या करने के लिए। पहले आदेश दिया सपने में, मुझे वहां से उठा कर लेकर आओ, मुझे बहुत गर्मी लगी। दूसरी बार आदेश दिया सपने में क्या, मेरे चंदन लेकर आओ। तीसरी बार आदेश दिया क्या, चंदन उठाकर गोवर्धन तक लाने की कोई आवश्यकता नहीं। अंदाजा लगाओ 80 पाउंड चंदन उठाकर 1800 किलोमीटर की यात्रा, चंदन उठाकर गोवर्धन तक लाने की कोई आवश्यकता नहीं। इस चंदन को लगाओ कहाँ लगाओ, गोपीनाथ में। तो उनका क्या भाग्य था कि भगवान ने 3 दफा उन्हें सपने में आदेश दिया। तो आप कह सकते हो या सोच सकते हो, अगर भगवान सपने में माधवपुरी को आदेश दिया तो हम भी सपने का आदेश लें। हमें भी जो सपना आएगा भगवान कुछ कहेंगे, हम उसका पालन करेंगे। तो इस विषय में हमारे आचार्यों ने शिक्षा दी है कि सपने में आदेश केवल आत्मज्ञानी व्यक्ति ही उसका पालन करते हैं। हम जो बद जीव हैं, हमें आदेश कहाँ से स्वीकार करना चाहिए, गुरु साधु शास्त्र का। तो ये चंदन यात्रा का उत्सव हम 21 दिनों के लिए मनाते हैं और ये शुरू होता है कब, अक्षय तृतीया के साथ 2 तारीख को शुरू हुआ था और कई दिनों में भगवान को पूरा है। छोटे विग्रह को तो रोज ही चंदन से सजाते हैं, पर बड़े विग्रह को भी कुछ चुने हुए दिनों में सजाएंगे चंदन के साथ। तो आप सब भक्तों से निवेदन है कि आप इस चंदन दर्शन जरूर प्राप्त करना। आप रुकोगे 1:15 तक, कितने भक्त रुकेंगे 1:15 तक, बस सब नहीं। ये खास दर्शन सबको प्राप्त नहीं होता, केवल अत्यंत भाग्यशाली व्यक्तियों को प्राप्त होता है। तो वृंदावन में 2 अक्षय तृतीया के दिन सारे प्रसिद्ध मंदिरों में भगवान सजे हुए थे चंदन के साथ। तो भगवान को तो चंदन हम लगाते हैं क्यों, उनके शरीर को ठंडा करने के लिए। वैसे तो भगवान को किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, ओम पूर्णा माता पूर्णा मिला, भगवान हर रूप से पूरे हैं। और भगवान हम सबको सेवा में जुड़ने का मौका देते हैं। जैसे जब हम भगवान का मंदिर बनाते हैं तो हम सब जुड़ते हैं मंदिर को तैयार करने में, हम भगवान के लिए कुछ कार्य करते हैं उसमें हम सब जुड़ते हैं। तो भगवान हम सबको जोड़ते हैं सेवा में, और हमें बड़ी खुशी के साथ इस सेवा में जुड़ना चाहिए। तो ये थी संक्षेप में माधवेंद्रपुरी की कथा। और जैसे मैंने कहा था पहले, इस कथा को आप चैतन्य चरितमृत में प्राप्त करते हो। आप पढ़िएगा, बड़ी गहराई के साथ इस कथा का वर्णन है। पर हम सबका क्या उद्देश्य होना चाहिए, भगवान की सेवा में जुड़ना। चैतन्य महाप्रभु ने खास करके 5 महत्वपूर्ण विषयों पर बल दिया। सबसे पहले उन्होंने कहा साधु संगत, साधु संगत में हमें रहना चाहिए। साधु संगत में रहोगे तो आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होगी, आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होगी तो आप आध्यात्मिक मार्ग में जुड़े रहोगे। तो ये जो रविवार का कार्यक्रम है जिसकी स्थापना प्रभुपाद जी ने की, इस उद्देश्य के साथ की थी कि आप लोग आओगे इतवार के दिन, भक्तों की संगत प्राप्त करोगे, आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करोगे और अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करोगे। और साधु संग में रहोगे तो ये भी ज्ञान प्राप्त होगा कि भगवत प्राप्ति का क्या साधन है, हरि नाम पहुँचाना। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो न सेवन सेवन सेवन, हरे के नाम, यही एक साधन है। जब परीक्षित महाराज ने पूछा कि कलियुग में लोगों का उद्धार कैसे होगा, शुक्रदेव गोस्वामी ने कहा कलियुग में दोष ही दोष है, एक गुण है इस कलियुग में, वो क्या है, कृष्णा का कीर्तन। तो आप सब से हमेशा ये निवेदन किया जाता है, कहीं नाम का जाप कीजिए। भगवान इतने दयालु हैं कि वो अपने दिव्य नामों में प्रकट होते हैं, काली काली नाम पर कृष्ण अवतार। और इस कलयुग में यही है भगवत प्राप्ति का साधन। ठाकुर भक्ति जी एक प्रार्थना में कहते हैं, प्रियता को वाणी था को सदा हरि बोले था को, चाहे आप गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी या सन्यासी, कृपा करके हरि नाम का उच्चारण जरूर करो। तो ये है निवेदन आप सबसे, हरि नाम का उच्चारण जरूर कीजिए। आप में से कितने भक्त हो जो हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हो रोज? कितने भक्त हो जो कि 16 माला का जाप करते हो रोज? अच्छा, और कितने भक्त हैं जो कि रोज नियमित रूप से जाप नहीं करते? बस एक ही, बस जो नहीं करते उनसे निवेदन है वो जाप करना शुरू कर दें, और जो कर रहे हैं उनसे निवेदन है बड़ा है। खास करके शास्त्र में कहा गया है ध्यान पूर्वक जाप करना चाहिए। जाप का लाभ तो हर स्थिति में है, पर जब आप जप माला करने के लिए बैठते हो, अगर आप केवल उसी पर एक ही कार्य करो वो ज़्यादा अच्छा है। यानी कि आप जप भी कर रहे हो और अनेक और दूसरे काम भी साथ कर रहे हो, तो हरि नाम का उच्चारण। तीसरा आदेश था क्या, किसे पता है तीसरा क्या था? भगवत श्रवणम, श्रीमद् भागवतम को सुनो। इसको उनके मंदिर में रोज भगवतम की क्लास होती है। नास्ता प्रेषु अभद्रेषु नित्यम भगवत सेवय, भगवती उत्तम श्लोक भक्ति भावती। जो ध्यान से भागवतम सुनेगा तो उसके हृदय की जो मैल है वो दूर हो जाएगी। तो भागवतम को सुनो। आप ऐसे कितने भक्त हो जो भागवतम क्लास को रोज इंटरनेट में सुनते हो? कोई नहीं, बात दो। और कितने भक्त हो जो कि मंदिर आते हैं क्लास सुनने के लिए? और कितने भक्त हो जो कि भागवतम को रोज पढ़ते हो घर में? तो लगता है कि इंटरनेट में आप लोग ज्यादा इंटरनेट का फायदा नहीं उठा रहे हैं। इंटरनेट में कम से कम इस सभा में एक या दो व्यक्ति इंटरनेट में सुनते हैं क्लास। और चौथा आदेश क्या था? श्रद्धा के साथ भगवान की आचार्य विग्रह की उपासना करो। तो भगवान की आचार्य विग्रह की उपासना करो श्रद्धा के साथ। ये नहीं ये पत्थर की मूर्ति है ये सोचते हैं क्या यहाँ स्वयं भगवान उपस्थित हैं। और पांचवा था धामवासी बन जाओ। तो आपका दिल्ली शहर भी एक रूप से धाम है। क्यों? क्योंकि प्रभा जी ने काफ़ी समय काटा यहाँ प्रचार बढ़ाने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा इन पांच अंगों का अगर पालन करोगे तो बड़ी सरलता के साथ भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकोगे। तो आप सब यहाँ आए हो, आते हो क्योंकि आपकी भक्ति योग में रुचि है। साधु संग में रहोगे तो ये रुचि तेजी के साथ बढ़ भी सकती है। और आप सबसे निवेदन है कि कम से कम हर रविवार को प्रयास करना चाहिए मंदिर आने के लिए। और साधु संग में रहोगे तो आप हमेशा सुनते रहोगे क्या माया बुरी है और भक्ति सबसे महत्वपूर्ण सेवा है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण सेवा है। कृपा करके इसका लाभ उठाइए और अपने जीवन को सफल बनाइए। हरे कृष्ण।